ये आकाशवाणी है। अब आप शेजीउल्ला फिरासत से इलाकाई खबरें सुनिए। पीसीसी सदर और वजीर आला रेवंत रेड्डी ने पिछली हुकूमत के करप्शन के इल्जामात से निमटते हुए साफ सुथरी हुकूमत देने का वादा किया है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से डिजिटल शक्ल में हासिल डेटा अपलोड कर दिया है। बीआरएस पार्टी को उस वक्त एक धक्का लगा जब चेवल्ला के रुकने पार्लियामेंट और खैरताबाद के रुकने असेंबली ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आने वाले पार्लियामानी चुनाव के लिए तीन उम्मीदवारों का ऐलान किया है। असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर हैदराबाद से मुकाबला करेंगे। अब आप तफसील से खबरें सुनिए। पीसीसी सदर और वजीर आला रेवंत रेड्डी ने पिछली हुकूमत के करप्शन के मसले से निमटते हुए साफ सुथरी हुकूमत देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना के अवाम की खिदमत की पाबंद है। उन्होंने एक खुशहाल और हरकियाती रियासत के मकसद को हासिल करने में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के 100 दिन पूरे होने के मौके पर तेलंगाना स्टेट यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट की तरफ से रखे गए सहाफत से मुलाकात प्रोग्राम में खिताब करते हुए बीआरएस सदर और साबिक वजीर आला चंद्रशेखर राव पर उन्होंने तनकीद की और इल्जाम लगाया कि उन्होंने बीआरएस दौर में रियासत में निजाम जैसी हुकूमत बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी आमिराना दौर की याद दिलाती थी जिसे निजाम दौर में देखा गया था। उन्होंने चंद्रशेखर राव पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने जमहूरियत की अहमियत को घटाया और अवाम की आजादी की तौहीन की। रेवंत रेड्डी ने उनकी हुकूमत के कामों का हवाला दिया जिनमें औरतों के लिए बस सफर मुफ्त, सब्सिडी पर गैस की स्कीम और किसानों के फायदे के लिए रायतुबंधु स्कीम शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने आज अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से डिजिटल शक्ल में हासिल डेटा अपलोड कर दिया है। इस डेटा को www.eci.gov.in/candidate-political-party पर मुलाहजा किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने एक बयान में कहा कि सियासी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर मोहरबंद लिफाफे में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ताल्लुक से डेटा दिया है। सियासी जमातों की तरफ से हासिल डेटा मोहरबंद लिफाफों को खोले बगैर सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया। इस साल 15 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अदालत की रजिस्ट्री ने एक मोहरबंद लिफाफे में पेनड्राइव के साथ डिजिटल रिकॉर्ड और नकूल वापस कर दी। चेवल्ला हल्के के बीआरएस रुकने पार्लियामेंट जी रंजीत रेड्डी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी सदस्य चंद्रशेखर राव को भेजे गए अपने इस्तीफे में उन्होंने पार्टी कयादत की तरफ से ताईद और मौका देने पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने रियासत के मौजूदा सियासी हालात में मुतबादल रास्ता अपनाने के लिए इसे एक मुश्किल फैसला बताया। वो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। बीआरएस रुकने असेंबली दानम नागेंद्र ने आज पार्टी को छोड़ दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। दानम नागेंद्र पहले बीआरएस रुकने असेंबली हैं जो कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनने के बाद उस जमात में शामिल हुए। ये नागेंद्र के लिए घर वापसी है जिन्होंने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में 2009 और 2014 के दरमियान कांग्रेस हुकूमत में वजीर की हैसियत से खिदमात अंजाम दी थी। वो 2018 में टीआरएस में शामिल हुए थे जो अब बीआरएस कहलाती है और वो खैरताबाद हलके से असेंबली के लिए चुने गए। उन्होंने हालिया चुनाव में अपनी निशस्त बरकरार रखी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पहले किए गए ऐलान के मुताबिक 15 से 31 मई के दरमियान क्यूट यूजी इम्तिहान का एहतमाम करेगी। इस मुद्दत के दौरान दो तारीखें आम चुनाव की तारीखों से टकरा रही हैं जो 20 और 25 मई हैं। यूजीसी सदरनशीन जगदीश कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि 26 मार्च को दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख गुजरने के बाद तुलबा और उनके जोग्राफियाई मकामात के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस डेटा और इंतखाबी तारीखों की बुनियाद पर एनटीए 15 से 31 मई तक डेट शीट का ऐलान करेगी। ये खबरें आप आकाशवाणी हैदराबाद से सुन रहे हैं। बीआरएस लीडर रावल श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि रियासत में बीजेपी और कांग्रेस बीआरएस को कमजोर करने के सियासी मिशन के साथ गठजोड़ कर रहे हैं। हैदराबाद के तेलंगाना भवन में आज एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए श्रीधर रेड्डी ने कहा कि अवाम ने महसूस कर लिया है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के कहने और करने में बहुत फर्क है। दोनों पार्टियों को आने वाले पार्लियामानी चुनाव में वोटर्स मुंहतोड़ जवाब देंगे। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान पर तनकीद की कि बीआरएस के 10 साल दौर में तेलंगाना को तरक्की से महरूम रखा गया। उन्होंने बीआरएस क्यादत के खिलाफ मरकजी वजीर किशन रेड्डी के नाशायस्ता रिमार्क्स और उसे चोरों की पार्टी करार देने पर एतराज किया। जगत्याल जिले के कोरटला मंडल में वेंकटपुर के करीब जगत्याल निजामाबाद सड़क पर होने वाले एक सड़क हादसे में 3 लोग हलाक हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मेटपल्ली जाने वाली एक बाइक ने एक ठहरी हुई लॉरी को टक्कर दे दी, जिससे 2 लोगों की मकाम पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे ने दवाखाना ले जाने के दौरान अपनी आखिरी सांस ली। मरने वाले मिस्त्री बताए गए हैं। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए ज़ाब्ते अखलाक लागू होने से कुछ दिन पहले 37 कॉरपोरेशन के सुदूर नशीनों का मुकर्रर किया। इन तकर्रुरात का कल तक भी ऐलान नहीं किया गया था, हालांकि हुकूमत ने 14 मार्च को जीओ जारी किया था। इस फहरिस्त में जो अहम तकर्रुरात हैं उनमें टीपीसीसी के कारगुजार सदर और संगारेड्डी के सीनियर लीडर जग्गा रेड्डी की बीवी निर्मला रेड्डी को इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन की सरबरा और पटेल रमेश रेड्डी को सयाहत के फरोख के महकमे का सरबरा बनाना शामिल है। प्रीतम को एसी कॉरपोरेशन, श्रीकांत गौड़ को बीसी फाइनेंस, अन्वेश रेड्डी को तेलंगाना सीड्स डेवलपमेंट, अनिल एरावंत को मिनरल डेवलपमेंट, नरेला सारदा को बीसी कमीशन, बल्लैया नायक को गिरिजन फाइनेंस डेवलपमेंट, गुरुनाथ रेड्डी को पुलिस हाउसिंग और पोडम वीरैया को जंगलात के फरोग का सरबरा बनाया गया है। बीआरएस लीडर लक्ष्मा रेड्डी ने जो पार्टी उम्मीदवार की हैसियत से मलकाजगिरी लोकसभा हलके से मुकाबला करेंगे, कहा है कि रियासत के अवाम आने वाले पार्लियामानी चुनाव में उनकी पार्टी को शानदार जीत दिलाने का तैयार कर चुके हैं। मलकाजगिरी हलके के पार्टी अरकान असेंबली, अरकान काउंसिल और दूसरे मुंतखब नुमाइंदों की एक मीटिंग में जो मल्ला रेड्डी की रिहायश गाह पर हुई, उन्होंने यकीन जाहिर किया कि रियासत में गुलाबी झंडा फिर से लहराएगा। मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन आने वाले लोकसभा इलेक्शंस के लिए अपने 3 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। पार्टी सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि हैदराबाद से एक बार फिर वो खुद लड़ेंगे। औरंगाबाद से मौजूदा रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बिहार के किशनगंज से अख्तर उल ईमान को टिकट दिया गया है। पार्टी बाज दूसरे हलकों से भी मुकाबले पर गौर कर रही है और इनके बारे में जल्द ही फैसला किया जाएगा। रूसी फौज में धोखे से शामिल किए जाने वाले हैदराबाद के 30 साल नौजवान मोहम्मद असफान की तदफीन बाद नमाज जोहर इतवार को मस्जिद कुतुबशाही बाजार घाट में अदा की गई। इसी मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ाई गई। असफान को ट्रैवल एजेंट्स ने धोखे से भेजकर रूस की फौज में भर्ती कराया था और उन्हें जबरदस्ती यूक्रेन से लड़ने के लिए महाज जंग पर भेजा गया था, जहां गोलाबारी में वो हलाक हो गए। कई दूसरे नौजवान भी हैं जिन्हें ट्रैवल एजेंट्स धोखा देकर यूक्रेन ले गए और रूसी फौज के लिए काम करने पर मजबूर किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने इस समाजी सोच को तोड़ने के लिए कि औरतें ट्रैक्टर्स नहीं चला सकती, देहातों में लड़कियों को ज़रई ड्रोन्स फराहम किए हैं। दिल्ली में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि उन्होंने नामो ड्रोन दीदी योजना के तहत देहातों में औरतों के अपनी मदद आप ग्रुपों को 1000 ड्रोन्स दिए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हुकूमत औरतों को मौशी और तकनीकी एतबार से बाख्तियार बनाने के लिए उन्हें खास तौर पर मुंतखब कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने पिछले 10 साल में हुक्मरानी का एक बिल्कुल नया मॉडल तैयार किया है, जिसमें उस आदमी पर तवज्जो दी जा रही है जो तरजीहात की फहरिस्त में सबसे आखिर में होता है। आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने पिछली बीआरएस हुकूमत के करप्शन के इल्जाम से निमटते हुए साफ सुथरी हुकूमत फराहम करने का वादा किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से डिजिटल शक्ल में हासिल डेटा अपलोड कर दिया है। बीआरएस पार्टी को उस वक्त एक और धक्का लगा जब चेवरला के रुकने पार्लियामेंट और खैरताबाद के रुकने असेंबली ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और हुक्मरान कांग्रेस में शामिल हो गए। कुलहिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने आने वाले पार्लियामानी चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर हैदराबाद से मुकाबला करेंगे। जगत्याल जिले के कोरटला मंडल में वेंकटपुर के करीब जगत्याल निजामाबाद सड़क पर होने वाले एक सड़क हादसे में 3 लोग हलाक हो गए। इसके साथ ही आकाशवाणी हैदराबाद से उर्दू में इलाकाई खबरें खत्म हुई।